వందే జగద్గురుం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పవిత్ర భూమి భారత మాతకు వందనం చేస్తూ ఉయే భారత కే మహాన్ సిద్ధో మే సే సిద్ధ जो सदा हमारे साथ रहते हैं, महाराज श्री के पुनीत पावन थी चरणों रणोदूत महाराज के पवित्र चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए, सभी संतों को नमस्कार करते हुए, भक्तों को प्रणाम करते हुए, मेरे उपस्थित प्रिय आत्मन, हम और आप, हमारी जो संस्कृति है वो एक विचारधारा है. विचारधारा एक सुगंध है और सुगंध का अनुभव सभी करते हैं. आज पूरा विश्व एक विचार दे रहा है. संभव है कि पूरा विश्व हिंदू अपने आप को न कहे, लेकिन हिंदू धर्म की जो विचारधारा है वह सुगंध है और पूरा विश्व इस सुगंध को अगर स्वीकार कर ले तो हर व्यक्ति के जीवन में परम सात परम शक्ति का जागरण हो जाए, आनंद और शांति की प्राप्ति हो जाए. पूरा विश्व हिंदू अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन हिंदू विचारधारा को अब स्वीकार कर रहा है. हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें मंत्र दिया, आज हमारे ब्राह्मणों के द्वारा उन मंत्रों का विचार आज वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं. मेरे समक्ष कठिन समाज है, उच्च समाज है, वैज्ञानिक भी मान गए कि अंतरिक्ष की शांति के बाद भारत के ऋषि और ब्राह्मण करते हैं. वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, ये विचार भारत से ही मिला. एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अस्तित्व सत एक है, उसके रूप अनेक हैं. सर्वे भवन सुखना, सबके कल्याण की भावना रख करके हर ब्राह्मण, हर भक्त, हर वडील, हर संत पूरे विश्व को समक्ष रख करके सबके कल्याण की भावना करता है. इसलिए भारतीय संस्कृति में विश्व मेरा कुटुंब है, लेकिन गौरव है मैं आपके बीच में हूं, भारत का हूं. ये भारत का गौरव है, लेकिन ये गौरव में सब हमारे हैं. इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो विचार है वो पूरे विश्व के लिए है. बगीचा आपका हो सकता है, गुलाब का बगीचा चाहे आपका है या अमेरिका का है या लंदन का है. हमारे जो अच्छे विचार हैं उसे पूरा विश्व स्वीकार करता है. मेरे प्रिय आत्मन, हमारे ऋषियों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति. आपके शुभकामना, आप सबकी कृपा से मैंने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पढ़ाई भी अच्छी की, उसका मुझे गौरव है. गौरव मेरा मान ये मेरा गौरव है, लेकिन मेरे मान में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, वो भी गौरव है। मैं अपने पिता का मान रखूंगा, लेकिन हमारे साऊ चाचा है, पिता के मान में साऊ चाचा का भी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन पिता की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। मैं माँ का सम्मान करूंगा, चाची भी है मासी भी है, उनका आदर करूंगा, लेकिन माँ की जगह माँ ही है और कोई नहीं। पूरे विश्व में भारत की जगह भारत है, हमारे रिश्ते में अमेरिका इंग्लैंड कुछ भी हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत की पूजा करता हूँ, अपनी माँ की पूजा करता हूँ, चाची साहू का सम्मान करूंगा। यही मैं आपसे कहूंगा, हम आप अपनी संस्कृति की पूजा करें, और अनादर तो हमें किसी का भी करना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि विज्ञान से सिद्ध कर दूंगा कि अनादर से हमारा कितना नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको आपका परिचय बताना चाहूंगा। हम आप जब इस धरती पर पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लिए, जन्म है प्रकट होना। हमारे ऋषियों ने कहा हम परमात्मा में से आए, प्रकट हुए, और आप तो पति समाज है, प्रिंसिपल बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपल परिचय करा, तो पति समाज है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है, अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट होती है, उसने भी प्रकट शब्द कहा है, अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट होती है और वापस अंतरिक्ष में जाती है। एक वैज्ञानिक ने जब विश्व के सामने अंतरिक्ष में से प्रकट होने की बात रखता है, तो पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे ऋषियों ने जब कहा कि हम सब परमात्मा में से प्रकट हुए, तभी पूरा विश्व स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब विचार तो कीजिए, अंतरिक्ष है क्या? हमारा संपर्क वैज्ञानिकों से है, हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन आज वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा, हमारे ऋषि मुनि अंतिम सत्य की अनुभूति करके जहां तक हमें रास्ता बताया, विज्ञान भी उधर चल रहा है, लेकिन अभी तक ऋषियों के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा। मैं वैज्ञानिक हूं इसलिए कह रहा हूं, और विज्ञान भी मान रहा है। आज विज्ञान की हर खोज हमारी मदद कर रही है, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे ऋषियों का जो अनुभव है, अभी उस अनुभव तक विज्ञान नहीं पहुंचा। और हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, अनुभव है एक्सपीरियंस। विज्ञान के पास प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट, और वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पति समाज है, एक उदाहरण दे करके बता दूं। पहले वैज्ञानिक कहते मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड, टू डिज कैन बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया, एक खोज कर रहे हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें अंतिम सत्य बताया, उधर ही मैं आपको ले चलूंगा। विज्ञान इसकी मदद कर रहा है, विज्ञान विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन समझने की बात है। तो प्रथम तो आपका परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। अस्तित्व का विनाश नहीं है, वेदों ने सत्य कहा, विज्ञान ने अस्तित्व कहा, और दोनों का से एक ही है। मैं आपसे जा पूछता हूं, यहां कठिन समाज है, क्या न्यूटन के पहले चीजें ऊपर जाती थी या न्यूटन के बाद नीचे आने लगे? जो सत्य था उसे प्रकट किया गया, द फैक्ट वॉज ब्रॉट बाय न्यूटन इन टू द नोट ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज नॉट क्रिएटेड बट इट वॉज ब्रॉट. न्यूटन ने के द्वारा निर्माण नहीं हुआ. इट डज नॉट मीन दैट बिफोर न्यूटन थिंग्स यूज टू गो अप एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट स्टार्टेड कमिंग डाउन. ऐसा तो नहीं कि न्यूटन के पहले चीजें ऊपर से नीचे नहीं आती या न्यूटन के बाद आना शुरू हुआ. सत्य था, फैक्ट था, इस तरह थिंक ओवर इट. हमें बताया, एक नाम दिया. जब हम आप सुबह अपना द्वार खोलते हैं, द्वार खोल करके प्रकाश को अंदर प्रकट करते हैं, द्वार खोलने से प्रकाश बनता नहीं. अस्तित्व या सत्य की जब बात करूं तो यही विज्ञान भी कहता है. यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, रिसर्च का मतलब क्या है? ऑन द बेस ऑफ द साइंस व्हाट डू मीन बाय रिसर्च? सच नहीं है फिर से खोज करना. व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्कवरी? Something is covered and you did it, that becomes discovery. कुछ ढका हुआ है जिसका मतलब उसे अलग करते हैं, प्रकट करते हैं. तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हम आप परमात्मा में से आए, प्रकट हुए. वैज्ञानिकों ने कहा अंतरिक्ष समय से हर चीज प्रकट होती है, वापस जाती है. तो प्रिय आत्मन, वेद विज्ञान दोनों के आधार पर कहता यहां पर जितने भी हैं, यह बात तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन खास जो यहां बैठे हैं पुत्र या पुत्री के रूप में, नर या नारी के रूप में, बड़े घर में जन्मे कि झोपड़ी में जन्मे, लेकिन आपका परिचय करा रहा हूं. न राम का खंडन है, न कृष्ण का खंडन है, न किसी गुरु का खंडन है. ये सब तो दीज आर द टेन सेंटर्स टू अटेन द परफेक्शन फॉर द मैनकाइंड. आप गुरु के पास क्यों आते हैं? स्कूल में क्यों जाते हैं? राम मंदिर में क्यों जाते हैं? कृष्ण मंदिर में क्यों जाते हैं? जीसस के पास क्यों जाते हैं? चर्च में क्यों जाते हैं? मस्जिद में क्यों जाते हैं? ये इसीलिए जाते हैं कि आपकी जो कमजोरी है उसका रूपांतर, और कमजोरी को रूपांतर में लाने के लिए सुनना और देखना, ये विज्ञान भी मानता है और हमारे यहां श्रवण मनन की बात की वो भी मानता है. हमारे आपके जो भी संस्कार हैं वो सुनने और देखने से हैं. आप पूरे विश्व का भ्रमण करें, इसलिए विज्ञान की बात यहां पर कहना चाहूंगा. बड़े प्यार से कहता, यहां किसी खंडन नहीं है. सबका तो खंडन हो ही नहीं सकता, सबका कोई विरोध भी नहीं कर सकता. सत्य में जब आप स्थापित हो जाते हैं तो यू गो बियॉन्ड माइंड एंड थिंकिंग. यह तो वाक्य निवर्तनते प्राप्त अनुशासन, आप वही स्वरूप हो जाते हैं और धीरे धीरे सब आपको कहीं कोई खंडन नहीं है. समझने की बात है, आप स्वयं सत हैं, सत में से प्रकट हुए. आप परमात्मा बोले, अस्तित्व बोलो, अंतरिक्ष बोलो, लेकिन जो समझने की बात है, जो जानने की बात है वो आपको बता रहा. आप थे, हैं और रहेंगे. आज अशोक जी के दरबार में आया, आप लोग यहां प्रकट हुए. अभी परिचय कराया, कोई बलसास आया, कोई नरोली से आया, कोई पास के गांव से आया, धर्मपुर से आए. तो आप धर्मपुर से यहां प्रकट हुए अशोक दरबार में, ये तीर्थ में, और यहां का कार्यक्रम पूरा करके जहां से आए वापस चले जाएंगे. तो आप में क्या फर्क पड़ता है? जहां से आए प्रकट हुए, प्रकट होकर फिर वापस वापस चले गए। यहां हम आप 100 साल के लिए आए हैं, जहां से आए हैं वहां वापस जाना 100 साल के बाद। लेकिन अगर आप समझ के धर्मपुर गए तो ठीक है, रास्ते में कहीं रुक गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना। इसलिए वापस जाते समय कहीं भटके नहीं उसका रास्ता बताना पड़ेगा। यहां तो नहीं भटके लेकिन हम डरते बहुत हैं, भय बहुत खाते हैं। तो सबसे पहले आप सब स्वीकार करें। आप सबको जब मैं वंदन करता हूं तो बड़े प्यार से करता हूं। रंगव धूप को बहुत नजदीक से उनकी कृपा मुझे भी प्राप्त है, साक्षात दत्तात्रेय का अवतार है। और उनकी एक ही बात अगर याद रखोगे तो कभी नहीं दुखे होगे, परस्पर देवो भव। अगर परस्पर देवो भव की बात करो, ये केवल हमारी आपकी बात नहीं है, भगवान के द्वारा निर्मित जितनी चीजें हैं, चाहे वो नाग हो कि सांप हो कि शेर हो, ये भावना रख करके जंगल में जाइए कि ये सब भी आपकी रक्षा करेंगे, आपका विरोध कभी नहीं करेंगे। मुझे बड़े प्यार से कहना पड़ रहा है, जो भक्त या भरवाड़ या संत या साधक जंगल में साधना की है या भेड़ बकरी चराए हैं या रहे हैं, बड़े प्यार से पूछता हूं, कभी नाग और शेर ने इनको काटा? और एक कोठरों में आके क्यों सांप काटता? अभी विज्ञान जवाब दे रहा है। जब हमारे अंदर पवित्र विचार होता है, राम पवित्र है, राम कहने से विचार पवित्र होगा, आकार बनेगा। एक डॉक्टर कहने से अच्छा विचार आएगा, डाकू कहने से अच्छा विचार नहीं आएगा। हर शब्द के पीछे चित्र है और हर चित्र के पीछे एक सुंदर असुंदर विचार है। इसलिए जो राम की बात चित्र की बात आई, ये बड़ी वैज्ञानिक है। आपके चंदन को शुद्ध करते हैं। अब थोड़ी वैज्ञानिक बात कर दूं, वैज्ञानिक खोज की है कि जब आप अच्छे शब्दों के साथ कहीं भी रहें, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सुगंध निकलती है। और एक गंध की पहचान पशु पंछियों को है, इसलिए सुगंध से समझ जाते हैं, नाग से जो भी जहरीले हैं समझ जाते हैं कि इनसे कोई खतरा नहीं है। आप लोग रामायण के अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, इसी बात को वैज्ञानिकों ने कह दिया है, एक्शन से रिएक्शन सारे को लेकर पोजिट। यहां पर आप अनाज रखिए, आपके मन में अच्छे विचार हैं तो कबूतर आकर ले जाएगा, और कोई और विचार है तो सामने आकर उड़ जाएगा। हित अनहित पशु पक्षी जाना, एक्शन से रिएक्शन सारे को लेने पहुंचे विचार के लिए। हमारे ऋषियों ने कहा जब आपके अंदर अच्छे विचार होते हैं तो सुगंध निकलती है। एक गंध की पहचान पशु पंछियों को ज्यादा है, हमारे विचार जब गलत होते हैं तो दुर्गंध निकलती है। आज जैसा आपसे कहा कि हमारी हर चीज पर वैज्ञानिक लोग अपने ढंग से प्रयोग करके बता रहे हैं कि भारत की संस्कृति में जो कुछ भी है उसके पीछे तन और मन को शुद्ध करके अपने आप को बलवान बनाना है, हमारे ऋषियों ने कह दिया। और वही बात आज विज्ञान भी कहा है, ऋषियों ने कहा नाम आत्मा बल हिन लभ्या, आत्मा नाम लक्ष्य है, आत्मा नाम शक्ति है, आत्मा नाम ब्रह्म है, आत्मा नाम आपका लक्ष्य है। कमजोर आदमी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता, सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, उसका जो मिशन उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोर के लिए कोई मदद मिलने वाली नहीं। विज्ञान इस बात को मान रहा है, सूरज निकला है, किसी की आंख में मोतियाबिंद है, तो सूरज के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए हमारी आंख का ठीक होना जरूरी है। और फिर विज्ञान कह रहा है, अरे व्यक्ति अगर तेरी आंख ठीक है तो सूरज को क्या, रात में तारे भी रास्ता दिखाएंगे तो चलेगा, और नहीं तो रात अगर आंख नहीं ठीक है तो दिन भी रात हो जाएगा। इसे तू अपने को ठीक कर, सूरज में गड़बड़ी, चांद में गड़बड़ी, तू दूसरे में गड़बड़ी क्यों देखता है? मनोविज्ञान भी कहता है, मेरे मुख का दांत कमजोर बना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पैसा देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कमजोर दांत को निकाल दो। मनोविज्ञान कहता है ऐ मनुष्य, आपके मुख का दांत जब कमजोर बनता है तो पैसा दे करके निकलवा देते हो, लेकिन जिम्मेदारी निभाते समय जगत में आप कमजोर बनोगे तो बिना पैसा दिए लोग उठा के फेंक देंगे, वहां पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। आज प्राण ये मनोवैज्ञानिक बात है, आज प्राण प्रतिष्ठा है, लाखों लोग इकट्ठे हैं, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन दो दिन के बाद पता चला कि मूर्ति खंडित है। अब मनोवैज्ञानिक कर रहे, पहले तो आपका परिचय दे रहे, मैं मूर्ति पूजक हूं, लेकिन विज्ञान के आधार पर जो बताना चाहता, मैंने कहा ना मैं तो टोटल हूं, मैं तो किसी का विरोध ही नहीं करता, किसी का विरोध करके अपना करना, विरोध का सवाल नहीं, समझने का सवाल है। समुदाय तक की बात बताऊं, सभी लोग मुझे मानते हैं, मैं उनको मानता हूं, मैं दूसरों की बात नहीं जानता। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा आप भारत के नागरिक से प्रश्न कर रहे हो, एक वैज्ञानिक से कर रहे हो, एक महात्मा से कर रहे हो, एक गुरु से कर रहे हो, एक नागरिक के नाते जवाब दूंगा, एक संत के नाते भी जवाब दूंगा, एक वैज्ञानिक के रिश्ते से भी जवाब दूंगा, और गुरु, लेकिन गुरु सुप्रीम पावर है और माता पिता गुरु जो बोल रहे हैं उसका कारण नहीं पूछना चाहिए, उसे स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे हित की बात, चाहे कुछ भी हो। इसे आज से भी कहूंगा सारी दुनिया से तर्क करना, लेकिन माता पिता गुरु जब बोले तो उसे स्वीकार कर लीजिए। कई बार मेरे सामने प्रश्न आया वैज्ञानिकों से, मैंने कहा है तुम्हारी फोटो है, ये तो कलर है, ये तो कागज है, तुम्हारे पिता यहाँ किसमें है? कहा स्वामी इट्स माई फीलिंग, ये तो मेरी भावना है स्वामी जी। ते दीवार पर आपके पिता का चित्र जब आप देखते हैं तो कागज कलर नजर नहीं आता, आप अपने पिता भाव से नजर आते हैं। तो हे मेरे प्यारे वैज्ञानिकों, जब आप मूर्ति का खंडन करते हो, आपके पिता का अपमान अगर मैं करूं तो मैं तो कागज समझ रहा हूं, लेकिन आप तो पिता समझ रहे हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? कहा नहीं स्वामी जी, आपके पिता जो मेरी दृष्टि में कागज हैं, कलर हैं, अगर अपमान करता हूं आप नहीं स्वीकार करते तो आपकी दृष्टि में क्या है आप जाने, लेकिन मेरी दृष्टि में भगवान है तो आप क्यों खंडन करते हैं? आप मेरा खंडन करके मेरा दिल दुखाते हैं। तो वैज्ञानिक मान गए कि हमें खंडन मूर्ति का नहीं करना। अगर खंडन मूर्ति कर रहे तो हमारे पिता की फोटो में नीचे उतार का अपमान करता हूं, अगर ये स्वीकार है तो वो भी स्वीकार करो। कहे नहीं स्वामी जी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं धर्म का अर्थ है बलवान बनाना। याद रखिएगा, जिस रास्ते से आप बलवान बनते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं, और चीज कितनी अच्छी हो लेकिन वो अच्छी चीज भी अगर आपको कमजोर बनाती है तो मनीषानंद कभी नहीं स्वीकार करते, कभी नहीं स्वीकार करते, कितनी अच्छी बात। धर्म कहते हैं बलवान बनाना, धर्म कहते हैं जोड़ना। मेरे पास लोग आते हैं, कोई बात होती है भाई भाई की बात, मेरे पास किस है, अलग होने के लिए आए हो तो वकील के पास जाओ, जोड़ना है तो मेरे पास आओ, मेरा काम जोड़ने का है, वकील काम नहीं है। और दोनों काम करना होता तो पढ़ा लिखा था, वकील बन के लाखों रुपया कमाता, कोई बात नहीं थी। अरे वो तो छोड़िए, अगर बटाटा भी बेचता तो भी 20,000 रुपया मैंने कमाता। एक बात करता यार समझो तो मुझे, मेरा क्या धर्म है। इसलिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति में एक आपको बता, मैं ज्योतिष वगैरह जानता हूं लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो आप समझिए, कर्म की बात, भावना की बात। मेरे प्रियात्मन राम रावण एक राशि के, राम माता पिता गुरु को वडिलों को मानते थे, रावण नहीं मानता था, कृष्ण मानते थे, कंस नहीं मानता था। और आज भी मेरे पास बहुत उदार है, मैं बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूं, इतने लोग बहुत आगे गए हैं, लेकिन वो माता पिता को मानते थे, गुरु को मानते थे, और उनके बच्चे कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि नहीं माने, तो पूरे विश्व में जिन लोगों का नाम है उनके बच्चों का नाम गुजरात वाले भी नहीं जानते, क्योंकि वो माता पिता को मानते थे और स्वयं उनके बच्चे माता पिता को नहीं मानते। मैं गांधी जी के चरणों में कोट कोट वंदन करूंगा। बातें मेरे पास बहुत है, लेकिन जब 2 अक्टूबर पूरा विश्व आज अहिंसक दिवस में मना रहा है गुजरात के है, मैं बापू से माफी मांगते हुए, आपसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा कि गांधी के 4 पुत्र हुए, नाम ही नहीं कोई जानता, जन्म तारीख क्या बताएगा। क्यों, इसमें बापू की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा, इसलिए मैंने विज्ञान से कभी आधार लेकर, कभी कोई मेरे पास आता है आप जो परिचय दे दे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कभी नहीं पूछता, सीधे कहता हूं कि आप अपने को समझे, अपने को बढ़ाए, अपने को आगे ले चले, मैं जाति की बात पूछता क्या जाति पाती को, ये आपका शरीर पर जो हाथ से बना है इसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, विज्ञान इसे एनर्जी मानता है, आकाश में कितनी ताकत है कोई सीमा, वायु में कितनी ताकत, जल में कितनी ताकत, अग्नि में कितनी ताकत, पृथ्वी, मेरे प्रियात्मा 5 एनर्जी 5 शक्तिमान चीजों से आप बने हैं, जिनकी कोई जाति पाति नहीं है, तो आपकी जाति का गौरव है। बाकी इतना बता दूं कि मैं आपको जब परमात्मा कहता हूं तो उस समय मेरे सामने कोई जाति पाति का ध्यान नहीं आता। जब मैंने देखा, एक उदाहरण, मैंने देखा कि मेरे पिता हैं, तो मैंने माँ से नहीं पूछा कि पड़ोस का पिता सांवला है, मेरा पिता गोरा क्यों है, माँ ने जो कहा स्वीकार किया, वहां कोई तर्क की बात नहीं थी। इसलिए आपके जो गुरु है वो जो भी बोलेंगे वो माँ है, पिता है और सब कुछ है, बहुत अनुभव से बोलेंगे, और मुझे अनुभव है हम सब ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम पैरेलल हो जाता है। मैंने अभी कहा आकार घटता बढ़ता है, अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन जिस अस्तित्व को आप मानते हैं, अस्तित्व तो एक है, लेकिन माँ से आशीर्वाद दूंगा और बेटी को आशीर्वाद, माँ से आशीर्वाद लूंगा और बेटी को आशीर्वाद दूंगा, अस्तित्व तो एक है, लेकिन भावाद्वैतम सदक क्रिया द्वैतम, भाव से, आत्मा से, ज्ञान से, भावाद्वैतम सदा क्रिया, क्रिया द्वैतम में कर, क्रिया में बेटी को आशीर्वाद देना है, माँ से आशीर्वाद लेना है। हमारे सामने शेर और घोड़ा दोनों हैं, दोनों का भोजन अलग है, वो विवेक हमें रखना पड़ेगा, व्यवहार का विवेक तो रखना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो आपको बताना चाहता कि जब हमारे अंदर सुंदर विचार होता है तो पशु पंछी भी समझ लेते हैं, और विज्ञान ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया खोज के, तो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये विज्ञान की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो जैसा जो बताऊं, हमारे आपके मन में जब सुंदर विचार आता है कीर्तन भजन हवन किसी भी द्वारा, तो जिसे हमने सुगंध कहा उसे वैज्ञानिकों ने कहा इथिलियन ऑक्साइड, इथिलियन ऑक्साइड, इसमें सुगंध होती है, ये पर्यावरण को शुद्ध करता है, आप में प्रसन्नता आती है। जो हमारे मन में गलत विचार होते हैं तो कार्बन ऑक्साइड होता है जो दुर्गंध है, तो विज्ञान भी कहता है भले उन्होंने सुगंध और दुर्गंध की बात की, लेकिन अच्छे विचारों में जो सुगंध है, आप पेड़ के नीचे बैठिए इसमें कैपिलरीज होती है, ये रशियन वैज्ञानिक सिद्ध कर दिए हैं जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं कि पेड़ के नीचे बैठकर आप राम राम बोले और देखिए उसकी प्रसन्नता, कंप्यूटर लगाइए उसकी प्रसन्नता को ग्राफ देखिए, और एक प्रयोग रसिया में करके देखा गया, 7 से 7:30 तक एक अच्छे व्यक्ति को पेड़ नीचे बैठाया गया और उसे कहा गया पवित्र मंत्रों का जाप करो, पवित्र विचारों का स्मरण करो 6 महीने तक, 7 से 7:30 एक पवित्र व्यक्ति को पेड़ नीचे बैठाया गया और आधे घंटे तक पवित्र मंत्रों का जाप करो, फिर 8 से 8:30 एक ऐसे व्यक्ति को पेट में से बैठा गया जिसके विचार अच्छे नहीं थे, अच्छे महीने के बाद देखा गया, जो लोग मैगजीन सतिया वगैरह के पढ़ते होंगे उसमें आ गया। मेरा तो संपर्क है ही, मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता, लफाई ताइवान को कह लो। छह महीने के बाद सात से साढ़े सात आधे घंटे जो अच्छे शब्दों का उपयोग करता था, कंप्यूटर लगा करके पेट में देखा गया, इसमें कैटलीज होते जैसे हमारी होती है ना, अभी तो नया विज्ञान भी आ गया, पेट भी एक दूसरे को कन्वे करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक बैठे इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमारी हर चीजों को विज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा, लेकिन अभी अंतिम बात को नहीं स्वीकार कर पाया, वो बात अलग है। विचार कीजिए, आपका ग्राफ आपको जब पेड़ के पास जाते सुंदर आता है, आज से साढ़े आज जो व्यक्ति गलत विचार लेकर पेड़ नीचे बैठा उसके ग्राफ को देखा गया, बहुत डाउन आता है। प्रयोग करके देखा गया, आपकी गाय है, गाय को प्यार करो, अच्छे शब्द बोलो, 50 ग्राम दूध ज्यादा देगी, एक दिन एक थप्पड़ मार के देखो दूध 100 ग्राम कम हो जाएगा। उसके विचारों के बाद अभी आपके यहाँ आया, कितना स्वागत आपने किया, यही मैं बता रहा हूँ विज्ञान के आधार, आपने स्वागत किया आनंद, ये हमारी संस्कृति है लेकिन विज्ञान कहता है। आप लोगों ने इतना स्वागत किया, मुझे फूल दिया, लेकिन प्रिय आत्मन ये फूल मेरे पास तो बाद में आया, पहले इसकी सुगंध आपके हाथ में आई फिर मेरे पास आई। और कोई आदमी मुझे कीर्तन देना चाहे तो उसके दुर्गंध भी उसके हाथ में आए। इसलिए कहते हैं जो तुम चाहते हो वही देना सीखो, जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में सुगंध आए तो फूल दो, चाहते हो कि सभी लोग मुझे प्यार करें तो फूल की तरह अच्छे विचारों का अपने अंदर खिलाओ, और चाहते हो कि दुर्गंध तो आपकी बात है। तो आज विज्ञान हमारी हर चीज को, हमारे ब्राह्मण आए, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं इसमें इंग्लिश के जाए इंसाइक्लोपीडिया देखिए, पहले नहीं था इंसाइक्लोपीडिया में, लेकिन अभी इंसाइक्लोपीडिया उठा के देखिए उसमें आ गया है, ब्राह्मण का भी और सेंट का भी, दोनों के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया, द हाइएस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ब्राह्मण्स एंड सेंट्स। और इसलिए के संस्कार देते हैं, या विचार कीजिए ब्राह्मण गुरुओं की इतनी इज्जत अब क्यों हो रही है सब जगह, विज्ञान अब मान रहा है। आपको आम का बगीचा लगाना है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, खातर पानी देना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी, लेकिन अब विज्ञान ही कह रहा है हे व्यक्ति तू आम का बगीचा लगाएगा तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन कांटे के झाड़ के लिए कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज को लायक बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मण साधुओं के द्वारा संस्कार का सिंचन करना पड़ेगा, और दुर्योधन और रावण बनाना है तो किसी गुरु ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगे। अब आया विज्ञान, हमारे ऋषियों ने कहा दिया आहार निद्रा भय मैं सुनम क्या, अब विज्ञान पे आ जाइए। हम आप जब धरती पर आए और पशु जब धरती पर आए, एक फर्क एक अंतर है, डिफरेंस। पशु जन्म जब धरती पर लेता है आता है तो उसकी नाल टूटी हुई होती है, हम पुत्र या पुत्री के रूप में जब आते हैं तो नाल लेकर आते हैं, इसलिए जिनकी नाल टूटी है हमने उसे पशु धर्म कहा, विज्ञान ने एनिमल पैशन कहा, मनोविज्ञान ने एनिमल पैशन कहा, और विज्ञान ने इसे कहा परस्पेक्टिव, और अब इसे इंट्यूशन कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन चय, ये चार चीजें हमें भी मालूम है, भोजन आहार नींद भय परिवार का आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, ये शेर भी जानता है, हाथी भी जानता है, घोड़ा भी जानता है, गधा भी जानता है, और हम भी जानते हैं। इंट्यूशन का क्या मतलब, द थिंग्स यू नो विदाउट थिंग, यही पशु धर्म है। बिना किसी सिखाए जो कुछ हम जानते हैं पशु धर्म है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि जो ऋषि मुनियों ने कहा जो आपको बता रहा हूं, अब मान गए कि जन्म से हम आप 90% पशु हैं क्योंकि नाल लेकर आए हैं, इसलिए जन्म से हमारे आप में सहन शक्ति नहीं। इसका उदाहरण दे दूं, आज मेरे घर में मेरी बेटी ने पुत्र को जन्म दिया और मेरी गाय ने भी बाछड़ों को जन्म दिया। गाय का बाछड़ा गर्मी में गर्मी सहन कर लेगा, बरसात में बरसात सहन कर लेगा, ठंडी में ठंडी सहन कर लेगा, क्योंकि जिनमें इंट्यूशन है उनमें सहन शक्ति कुदरती है। लेकिन मेरी बेटी का बेटा नहीं सहन कर सकता, उसमें 10% इंटेलेक्ट है। अगर मेरी बेटी का बेटा सहन शक्ति नेचर की आ जाती तो पशु बन जाएगा। इसलिए गर्मी में हम अपनी बेटी के बेटे के लिए उसके विरोध में व्यवस्था करेंगे, नेचर में गर्मी है लेकिन उसकी व्यवस्था गर्मी के खिलाफ होगी, ठंडक में रखेंगे, बरसात में सूखे में रखेंगे, ठंडी में गर्मी में रखेंगे। इसलिए विज्ञान कहता है कि आए व्यक्ति जन्म से ही नेचर कहती है पशु के लिए नहीं, हमारे आपके लिए। अगर तुम्हारे पिता ने गर्मी के खिलाफ, ठंडी के खिलाफ, बरसात के खिलाफ प्रबंध किया है तो तू जिंदा रहेगा, नहीं ठंडी गर्मी बरसात तुझे खत्म कर देगी। इसके विरोध में तुम्हारे पिता को आपके जिंदा रखने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब विचार कीजिए, ये तो हमारे पिता की बात है और हमारी आपकी क्या बात है। लोग आते हैं कहते स्वामी जी मैं इतना अच्छा हूं ऐसा हूं, मेरे प्रिय आत्मन अब विज्ञान मानता है, चाहे कोई समय देखिए लेकिन दो परवल हमेशा रहे। वो शुभ अशुभ मानते हैं, प्लस माइनस मानते हैं, लेकिन मैं उसे समझा रहा हूं। आप जानते हैं आप पढ़ लीजिए, जहां प्लस है माइनस होगा, इट हैपन्स, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड इट, इट हैपन्स, बस ये होता है, जो होता है उसको स्वीकार कीजिए, क्यों होता है छोड़िए, देयर इज नो आर्गुमेंट। अब इसी को मैं बता रहा हूं, आप राम का समय देखिए तो वैज्ञानिक हिसाब से दो पात्र हमेशा रहेंगे, शुभ और अशुभ। रामायण में शुभ कौन है? राम। अशुभ कौन है? रावण। महाभारत में शुभ कौन है? कृष्ण है। पांडव में अशुभ कौन है? अब यही आ जाइए अपने पर, मेरे प्रिय आत्मन समय कोई था कि है रहेगा, ये दो परबल हमेशा रहेंगे। और मनोविज्ञान कहता है किसानों के लिए संबोधन कर, आप खेत में गेहूं लगाते हैं लेकिन गेहूं के साथ घास आती है लेकिन घास के साथ गेहूं नहीं आता। आप यज्ञ करोगे तो राक्षस आ जाएंगे लेकिन राक्षस जहां जाते हैं वहां यज्ञ नहीं होता। इसलिए जहां शुभ काम करोगे ये अशुभ क्यों आता है? आपको मजबूत बनाने के लिए। विज्ञान कहता है जिसकी जिंदगी में कोई विरोध नहीं हुआ उसने जीवन में आप देखे कोई क्रांति भी नहीं आई। इसलिए वेद विज्ञान दोनों का आधार पे कहता है मेरे प्रिय आत्मन जीवन में जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना जबरदस्त भी आपका विरोध होगा। विरोध को सहन करके निकलने का रास्ता निकालिए और विरोध में जहर पीकर मरने की बात न कीजिए। जहर को पचाना सीखो। राम का क्या जहर है देख लीजिए, पूरी रामायण में जहर से भरी है लेकिन पचाया। पांडवों के लिए क्या है? पूरा जहर पैदा किया है। अगर समस्या हल करनी है तो उदाहरण देखो, राम ने समस्या नहीं बनाई है, समस्या को हल किया। समस्या बनाई है रावण ने। पांडवों ने किसने कोई समस्या नहीं बनाई है, समस्या बनाई है कंस ने और कौरवों ने। और ये परिबल हमेशा चलता रहेगा। कई बार मेरे सामने प्रश्न किया जाता है स्वामी जी परेशानी कब दूर होगी? मैंने कहा आप हिंदू हो? हाँ। आप बताइए राम की परेशानी कब दूर हुई? नहीं समझ पाते। मैंने कहा राम की परेशानी तब दूर हुई जब वो वापस अयोध्या गए, इसलिए 100 साल के बाद जब वापस जाओगे तब परेशानी दूर होगी, और 200 बरस का आशीर्वाद दूंगा तो 200 बरस तक परेशानी का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। परेशानी करने बात आप बताइए किसके जीवन में परेशानी नहीं आई? जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हमारी आपकी माँ ने प्रसव की पीड़ा को सहन किया, प्रसव की पीड़ा को सहन किया तभी जन्म हुआ, और ये सब पीड़ाएं प्रसव की पीड़ा जैसे सहन करोगे तो शक्ति का जन्म होगा। चाहे आप भगवान बुद्ध की तरह कि महावीर की तरह कि कबीर की तरह, थोरो की तरह, शेक्सपियर मिल्टन लॉन्गफेलो की तरह, तुलसीदास की, सूरदास की, आकाश भरा किसी भी तरह, नरसिंह मेहता की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, सर सीवी रमन की तरह कि मेघनाथ साहा की तरह, किसकी बात करूं, साहित्यकार की करूं कि वैज्ञानिक की करूं कि कवियों की करूं, साहित्यकारों की करूं, कोई बड़े घर में जन्मे है कोई झोपड़ी में, और पुराने जितने वैज्ञानिक है कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई कह दे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आर्कमिडीज है, न्यूटन है कोई ग्रेजुएट, इतनी शक्ति कहां से आई? हमारे जितने पुराने कवि भी हैं कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इतनी शक्ति आपसे आई कहां? यही पर मैं डिग्री के पक्ष में, प्रोफेसर के पक्ष में, मैं आपकी पढ़ाई लिखाई खंडन नहीं करता, लेकिन जो आप कमजोर हो जाते उस कमजोरी पर प्रहार कर रहा, कर्म करने से जो नहीं कर रहा था विचारों में कमजोरी आ गई, हमारे कृष्ण उसकी कमजोरी को दूर किया। ये जिम्मेदारी निभाते समय जो हम पारायणवादी बन जाते हैं, हमसे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? भागने से कोई समस्या नहीं हल होती, सामना कीजिए। इसलिए यहां पर जितने बैठे हैं बड़े प्यार से विज्ञान और वेद के आधार पर कहता हूं, हम आप शुभ है, शुभ। मैं भोजन करता हूं, आप भी कर दे, लेकिन हमारे भोजन में से ब्लड खून बनता है, मलमूत्र बनता है। विज्ञान ने बताया ये खून जो है शुभ है और मलमूत्र अशुभ है, इसे निकालो। अगर नहीं निकल सकता तो भाई डॉक्टर के पास जाओ। हमारे में एनिमल पर्सन पशुता भी है, वो कमजोरी है, पशु के लिए कमजोरी नहीं है, हमारे लिए, हमारे अंदर डिवाइन पावर भी है, ड्यूनिटी भी है, वो हमारा प्लस पॉइंट है, लेकिन एक माइनस सारे प्लस को माइनस कर देता है। इसलिए बहुत ही हमें तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। करोड़ों का प्लेन होता है, एक नट ढीला हो जाए, कमजोर हो जाए, नीचे आ जाता है। आपके पास बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन मर्यादा के बाहर एक करोगे तो सारी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। आप आईजी बन गए, डीएसपी बन गए, सेठी बन गए, महामंडलेश्वर हो गए, लेकिन मैंने देखा कि जिनमें एक कमजोरी आई, पद भी गया, धन भी गया, शक्ति भी क्षीण हुई, कीर्ति भी गई। मनोविज्ञान का था, एक बूंद जहर 1000 लीटर दूध को जहर बना देगा, लेकिन हजार लीटर दूध एक बूंद जहर को दूध नहीं बना पाएगा। इसलिए हमारे यहां जो श्रवण मनन की बात की गई, ये संस्कार की बात है। जन्म के बाद जिस पर्यावरण में आप रहे उसे आप स्वीकार करो, और जन्म से अगर देखा जाए तो हर आदमी सत्य और प्रेम के पक्ष में, ये तो बाद में संप्रदाय और जाति पाति के हिसाब में विरोध पैदा किया जाता है। एक बालक तो यहां मैं जो आपके बीच में आया, छबीलदास के द्वारा अशोक भाई आए, परिचय हुआ, ये तो रंगभूत के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, मैं मिला हूं, उनकी कृपा मिली, उनके आप परिवार हैं, और उनके परिवार में आकर मैं अपनापन महसूस करता हूं, ऐसा नहीं कोई दूसरा कर, और अपना ही समझ के कर रहा हूं। रंगभूत महाराज कितने समर्थ थे, जा विचार करो, अब इसी पर सब कुछ ले लो। आप राम की पूजा करते करें, आप कृष्ण की पूजा करते करें, आप शिव की पूजा करते करें, आप रंगोद की करते करें, आदर सबका कीजिए लेकिन टोटल सरेंडर एक को कीजिए। आप एक को कीजिए टोटल सरेंडर। विज्ञान भी कहता है एक डोल में पानी भर लीजिए और लकड़ी उसमें रखिए, अगर लकड़ी टोटल पानी में है तो भी सीधी नजर आएगी और पानी में से निकाल लीजिए तब भी सीधी नजर आएगी। लकड़ी आधी पानी में है, आधी पानी के बाहर है तो टेढ़ी होती है, इसलिए आधे में बनिए। जिसकी पूजा कीजिए टोटल 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 कीजिए, नहीं तो आधे इधर आधे उधर फिर टेढ़े हो गए और टेढ़ी लकड़ी को जलाया जाता है, उसका टेबल नहीं बन रहा। एक बात करता हूं, नहीं कोई काम बनेगा। जब विचार करो, जब तुलसीदास जी आए, कहानी नहीं है, समझना है। मैं जानता हूं कृष्ण, लेकिन फिर भी मैं नमस्कार करूंगा तो धनुषधारी को हो गए। मैं कहता है सबको नमस्कार करो, भी आप घर सबको नमस्कार करो, लेकिन मन में अपने गुरु का स्मरण करके ही करो। और ये भी माने जिसको नमस्कार कर रहा हूं वो भी इन्हीं का स्वरूप है, उनसे कोई अलग नहीं, नहीं। देखो कितनी शक्ति मिलती है। विज्ञान क्या कहता है, आई डू थिंक सोल बिकम। अच्छा, आप रंगोद की पूजा करते हैं, आप राम की करते हैं, किसी के प्रवचन में प्रभावित हो करके आपने सोचा कि भाई राम में शक्ति नहीं है, और मान लो उसने ऐसा लॉजिक दिया कि आप किसकी पूजा करने लगे, फिर कोई और लॉजिक दिया तो शिव की करने लगे, तो जरा आप विचार कीजिए श्रद्धा का मतलब क्या है। श्रद्धा मतलब पूर्ण समर्पण, और यही बताया गया। समय ने अर्जुन को हिजड़े कपड़ा पहनाया, लेकिन जो श्रद्धा थी नहीं। श्रद्धा करते हैं, ये दुख सुख तो हमारे कर्म है, लेकिन सुख या दुख दोनों में कैसी परिस्थिति होगी, लेकिन मैं अपने इष्ट का त्याग नहीं करूंगा, और इष्ट का त्याग कर दोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। या विचार करो, मैं तो रिसर्च वगैरह क्या देखा, कितने भाग जाते थे। मैं कहता रुको सही तो भागते क्यों, यही मैं आपसे कहूंगा। आप एक बार जब चुनाव कर लिए, चाहे भजन का की पूजन का है, सब में वही है इस भावना से। और विज्ञान क्या कहता है और उसकी बात बता दो। जो कुछ हम बोलते हैं सुनते हैं वो अंतरिक्ष में जाता है, हमारे यहां शब्द का विनाश नहीं है, और अंतरिक्ष से पूरे विश्व में फैलता है, लेकिन शुरुआत आपसे होती है। अब इसका मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक उदाहरण दे दूं। हम कभी सूरत से बात करते हैं, दिल्ली से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, मोबाइल पर, इंग्लैंड से, तो वैज्ञानिक व्यवस्था क्या है, एक मेरे पास नंबर है, हमने डायल किया, पहले अंतरिक्ष में गया, टावर पर गया, फिर उस व्यक्ति से गया, उस समय लाखों लोग घुमा रहे हैं, लेकिन जिस नंबर को मैंने सही ढंग से किया वो उसे मिलेगा, और वो जब नमस्कार करेगा तो मैं आशीर्वाद दूंगा। याद रखिएगा, यहाँ अशोक दरबार में बैठे बैठे दुनिया में अगर व्यवस्था है तो मैं उस व्यवस्था सब जगह फोन कर सकता हूँ। इसी समय करोड़ों जा रहे हैं, लेकिन जिससे मैं बात करना चाहूँ कर सकूंगा, और जिससे बात कर उसकी आवाज मैं सुनूंगा। इसलिए जब कहा गया हे भगवान सबको सुखी रखो, ये अंतरिक्ष में जाएगा, सब सुखी बने कि न बने, लेकिन शुरुआत तो मेरे से होगी, इसलिए कहना पड़ता है भगवान सबको सुखी रखो। उसमें अपने को जोड़ने की कोई जरूरत, क्योंकि ज्ञान कहता है जो चीज जहां से जाती वापस वहीं आती है। तो ये प्रार्थना में जो बोलते हैं हम अपने लिए, अपने स्वरूप के लिए, हमारी माताएं आती हैं, शक्ति हैं, इनको मानता इनको सही महाराज गुरु महाराज हो, लेकिन रामकृष्ण ने कहा है चाहे कोई गुरु हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, सबकी माँ थी। और माँ में अगर अंबा जी देखिए तो देखिए अंबाबे से बाने, अंबाबे से बाने गुजरात लिया, माँ ने हिंदी भाषण लिया, अम्मी मुसलमानों लिया, माँ अंग्रेजों लिया। तो हर माँ चाहे बा बोलो, मम्मी बोलो, अम्मी बोलो, माम बोलो, लेकिन वो अंबा का स्वरूप है और अंबा तेल पर बैठती है। जिसकी माँ तेल पर बैठी है उसकी संतान कभी बकरी नहीं हो सकती। ये मनोवैज्ञानिक विचार है। लेकिन 150 वर्ष में इन लोगों ने हमारे विचारों बदल, हमारे विजन में डिवीजन डाल दिया। इधर न जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये भ्रमण काल में हाथ जोड़ता था, कई जगह ऐसे का, स्वामी जी यहाँ शिव का नाम न लेना, स्वामी जी यहाँ विष्णु का नाम न लेना। मैंने कहा हरिहर तो बोलते हैं, और जब संकट और परेशानी आए तो विष्णु और मर्यादा से बाहर जाकर विश्व सुंदरी रूप धारण करके बचाया। तो तुम्हारे शिव और विष्णु में नहीं लड़ाई है तो चेलों में क्या लड़ाई हो गई? इसलिए मनोविज्ञान क्या कहता है, मैक्सिमम आप मिनिमम और मैक्सिमम, आप राम को मानते हो मैं कृष्ण को, शून्य बन जाओ तो विराट हो जाओ, सब एक हो जाओ। शून्य में जाते ही शून्य क्या है आपको बताता, फिर शून्य की इन्फिनिटी है, वन द जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी आनंद। देख लीजिए जब आप शून्य बने और शून्य से फिर जब आप अनंत में गए तो वो भी ऐसे शून्य है। मैं आपसे कहता विज्ञान कहता मिनिमम और मैक्सिमम पैरेलल हो जाते हैं। चाहे आप समाधि लगा लें, चाहे आप विराट में जाएं, विराट में आप सबको राम देखोगे, देयर इज नो अदरनेस। अगर राम के अलावा कोई और नजर आया तो आपकी साधना में पूर्णता नहीं है। मैं किसकी पूजा करता हूं, कोई दूसरा नजर आया तो कहा, विज्ञान जवाब देता। सुन की बात पहले विज्ञान कहता, व्हाट डू थिंक, व्हाट डू सी। जब आप सुसुप्ति में होते हो, साउंड स्लीप में होते हैं, आप हैं, लेकिन वहां कौन है, कोई नहीं है, फिर भी आप हैं, न कुछ सोचते न देखते हैं। मेरा पुत्र मेरे बगल में सोया, मेरा चेला मेरे बगल में सोया, मैं भी सो गया, वो भी सो गया, कौन पिता कौन पुत्र। इसलिए न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, 10 कमांड, जो बाइबल जो जो जानते हैं बाइबल पढ़िए, द 10 कमांडमेंट सुन, फादर एंड आई आर वन। कैसे, मैं पिता हूं, मेरा शिष्य मेरा पुत्र मेरे बगल में सोया, एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे हम बोलते हैं सुसुप्ति साउंड स्लीप। वहां उस समय ऐसी स्थिति में पूछो, मनीषानंद जी आपका चेला बगल में, ना मैं हां बोलूंगा ना बोलूंगा। चेले से पूछो कि आपका गुरु बगल में क्या, अगर हां बोले या ना बोले दोनों में मेरा अस्तित्व पिता का या लड़के का बनेगा, लेकिन एक ऐसे अस्तित्व में हूं जहां ना हां बोल सकता ना, इसलिए फादर है ना आई आर वन, दोनों एक हो गए। या विचार करो, व्यवहार में बताया ना व्यवहार अलग चीज है, लेकिन इस समय जो आपको बताना चाहता हूं, जहां कोई नहीं वहां आप। मैं भी आपसे कहूं कि कमरे में जाकर देखिए जहां बैठा तो कितने लोग बैठे हैं। आप पहली बार गए और आए, कहा स्वामी जी 10 अच्छे लोग बैठे हैं। आधे घंटे के बाद कहा स्वामी जी वहां कोई नहीं, तब आपका विज्ञान जो दी मोमेंट यू से 10% हुआ गया। जब आपने पहली बार कहा कि 10 आदमी बैठे हैं तो आप भी वहां मौजूद थे, आधे घंटे के बाद आपने कहा वहां कोई, द मोमेंट यू से देयर इज नो बडी, नो बडी देयर एक्चुअली सिवा देयर, सो देयरफॉर यू शुड नो बडी देयर। आपका मनोविज्ञान कहता है जब कहा 10 व्यक्ति बैठे तो आप भी वहां उपस्थित थे, और जब आपने कहा स्वामी जी वहां कोई नहीं वहां तू तो है, कहता है कोई नहीं तू है, इसलिए कहता है कोई नहीं, जहां कोई नहीं वहां तू है, तू है, तू है, कोई तो है। और उसी की खोज की गई, इसलिए वो जब अवतार राम के रूप में आया, किसके रूप में, बुद्ध भगवान, कितना जबरदस्त संघर्ष किया। इसलिए इशारा करता यहां जितने लोग बैठे हैं ये वर्तमान है, अतीत से सीख करके ये वर्तमान को समृद्ध बनाओ। अब विज्ञान भी कहता है कि कल नाम की कोई चीज नहीं है, कल आप पकड़ नहीं सकते, कल भी जब आज बनेगा तो आपकी पकड़ में आएगा, लेकिन आज को जिसने नहीं संभाला तो कल कैसे संभाल पाएगा। हर चीज थी, है और रहेगी। ये कीर्तन के द्वारा, हवन के द्वारा ब्राह्मण आए, पूजन हुआ, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? हमारे आपके अंदर 90% पशुता है, और विज्ञान कहता है जो चीज है उसे आप खत्म नहीं कर सकते। जो आपके पास यू कैन किल इट, यू कैन चेंज आर ट्रांसफॉर्म इट, या तो उसे बदल सकते हो या रूपांतरित कर सकते हो, परिवर्तन या रूपांतर। लेकिन विज्ञान फिर भी कहता है पानी से बर्फ होना ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन थोड़ी देर के बाद फिर पानी हो जाएगा। लेकिन रूपांतर क्या है? दूध में से दही बनना। अब लाख कोशिश करो लेकिन दही अब दूध के रूप में नहीं जाएगी। दही का मंथन करके मक्खन निकाला, अब लाख कोशिश करोगे लेकिन मक्खन फिर दही में नहीं जाएगा। इसे वैज्ञानिक कहते हैं हमारे अंदर जो एनिमल पैशन है उसका पहले परिवर्तन लाओ, प्रक्रिया प्रोसेस लाओ। हमारे अंदर जो गलत विचार है, जो एनिमल पैशन है, उसके लिए अच्छा सुनना, अच्छा देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर की, कथा की, सत्संग की व्यवस्था की गई। सुनने और देखने से परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन से आप शुद्ध बनते हैं। आप ब्राह्मण आए, पूजन किया, आप लोग इतने प्रसन्न हैं। आप भेद उठा के देखिए, आप मुझे देखकर प्रसन्न हो गए, मैं आपको देखकर प्रसन्न हो गया। ये प्रसन्नता ही परमेश्वर की प्रथम भेंट है, प्रथम भेंट है। और इस प्रसन्नता, जो प्रथम ईश्वर की भेंट है, नहीं स्वीकार करोगे तो आगे तुम्हें क्या मिलेगा? और प्रसन्न रहने के लिए आपको किसका आधार लेना है? केवल विचारों का जो आपके पास है। इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसा है दुनिया में सब चीज, लेकिन प्रसन्नता प्राप्ति के लिए न कोठी जरूर न पैसे, जहां हो वहीं उसको प्राप्त कर सकते। तो प्रथम भेंट तो प्रसन्नता है, लेकिन भविष्य की चिंता करके दुखी हो रहे। इसलिए अंग्रेजी शब्द आया अटेंशन और टेंशन। इन फैक्ट अटेंशन मीन्स वेन यू पे द अटेंशन टुडे, आज जो ध्यान दे तो अटेंशन है। द थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड, बट यू थिंक अबाउट टुमारो, वो टेंशन है। आज जो ध्यान देते हैं वो अटेंशन है, जो कल आपके हाथ में नहीं ध्यान देते हो टेंशन है। और 80% आज लोग कल में है, आज में तो कोई है ही नहीं, आज में तो कोई है ही नहीं। और जिसने आज को नहीं संभाल पाया, लोग मेरे पास आते हैं बड़े प्यार से, कहूँ स्वामी जी आप ज्योतिष जानते हो? मैंने कहा जानता कि नहीं जानता, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हो? कहा स्वामी जी मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बन जाऊंगा। मैंने कहा कि पहले फर्स्ट, अभी क्या पढ़ते हो? अभी पहले फर्स्ट क्लास लाओ, पहला कदम उठाओ, फिर आके पूछो, फिर आगे बताओ क्या बनूंगा। एक एक कदम उठाओ, क्यों नहीं बन सकते? आपके पहले नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ज्योतिष जानता हूं, ऐसा कि नहीं नहीं जानता, लेकिन मेरे पर थोड़ा विज्ञान का असर है। और वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, बड़े हाथ बिना कर्म किए अपने भविष्य की जानने की जिज्ञासा रखने वाले, बिना कर्म किए अपने भविष्य की जिज्ञासा रखकर जानने वाले तो मूर्ख हैं, और बिना कर्म देखे उनके भविष्य को बताने वाले भी महामूर्ख। कर्म देखा नहीं, महाराज मेरे खेत में क्या होगा, तूने लगाया क्या? नहीं नहीं आप बताइए क्या होगा, पहले बताओ सर लगाया क्या। लोग मुझसे कहते महाराज आशीर्वाद दो, मैंने कहा चोरी करने का आशीर्वाद दो कि दान देने का आशीर्वाद दो, पहले बताओ। तो चोरी करने जा रहा है कि दान देने जा रहा है, आशीर्वाद किसका दो? एक विचार करता, इसलिए समझ करके भी आशीर्वाद देना चाहिए, नहीं तो संकट की तरफ परेशान हो जाओगे। बहुत भोले नहीं बनना चाहिए, वो सीखना है तो आशीर्वाद देने में भी संभाल के देना, जो कुछ भी है संभाल के करना। मैं अमेरिका में था जब लेबर यूनिवर्सिटी, वहां का ही क्वेश्चन किए गए थे। ये चंद्र सिंह वगैरह जानते हैं सब, किशोर सब थे मेरे साथ में, आपने पैसे दिया। तो वहां एक प्रोफेसर मुझसे पूछता है, स्वामी जी दस दस सोल एग्जिट दस आपके मैन, स्वामी जी क्या मरने के बाद आत्मा जिंदा रहती है? मैंने कहा मिस्टर प्रोफेसर टुडे आई सी द मैन इज डेड एंड यू से द सोल इज नॉट डेड। आप कहते हैं क्या मरने के बाद आत्मा जिंदा रहती है? मैं तो देख रहा हूँ आपका आदमी मरा हुआ, मरने के बाद आत्मा जिंदा रहती होगी किस काम से? आप जिंदा हो जिंदा बनो, ही वॉज वेरी मच प्लेट। मैं तो देख रहा हूँ टुडे मैन इज अलाइव बट द सोल इज डेड, जिसमें प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं। या विचार तो करो, हमसे पूछा जा रहा है क्या मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहता आज किधर जा रहे हो? मुझसे किसी ने पूछा स्वामी जी भूत प्रेत होता है? मैंने कहा होता कि नहीं होता अभी विज्ञान की बात है, लेकिन भूत मैंने देखा है। कहा आपने देखा, कैसा होता है? मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ, जिसने पूछा तू रोज आना बिना जरूरत, जब चाय लेट हो पत्नी देती है तो उसको गालियां देता है क्या, आशीर्वाद देता है? अरे जीते जी तो तुम्हारी सेवा कर रही सता रहा है, जिसको तू सता रहा है बिना जरूरत वही तो भूत है, तो तू मर के भूत नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जीते जी मैं भूत देख रहा हूं और मैंने एक बात भूत की बात आप कर रहे हैं, जा विचार तो करो। इसलिए विज्ञान और वेद के आधार पर मैं वर्तमान को जिंदा रखना चाहता हूं। हम आप वर्तमान, हमारा जो अतीत है उससे सीखो। रामायण का जो है किससे सीखे? रामायण में जो कहां से आया? अपने वडिलों की बात, सीता नाम हमारा आपका है, अपने वडिलों की बात न मानना। राम वडिल, पति वडिल, हमारा रक्षक पति, हमसे जो बड़े हैं पूज्य हैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देना, तकलीफ शुरू होती है। लक्ष्मण मर्यादा का चिन्ह है। आप दुनिया में जितनी तकलीफें हैं कहीं भी, अतीत से यही सीखना है। हमने अपने माता पिता गुरु का आदर नहीं किया, लंका चली गई। वो यथार्थ को समझने की कोशिश करो, या तो मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। पेपर उठा के देखिए, रोज किसी ने हर तरह के लोग आते हैं, उसमें यही आ पाए हैं मर्यादा। तो अतीत से हमें सीखना है, श्री आत्मा रामायण से हमें अपने माता पिता गुरु का आदर, और जो विचार देते तर्क मत करो, उसे स्वीकार करो। महाभारत से सीखना है, इतना समझाया जा रहा है दुर्योधन को, कितनी बार परास्त हुआ लेकिन मोह ने सत्यानाश किया। इसलिए याद रखिएगा, हमारे आपके अंदर प्रेम की बात की गई है। प्रेम सबके लिए सुगंध पैदा करता है, सबको अधिकार प्रदान करता है, और जब आसक्ति आती है, मोह आता है, तो आदमी न्याय नहीं कर पाता। कितनी परेशानियां जो हैं ये मोह के कारण। इसलिए अतीत की कहानियों में आज वर्तमान को यही देखना है। विदेशी लोग मेरे से जब पूछते हैं तो जवाब देता हूं, पत्नी को वापस लाना ये पति धर्म है, ये रामायण की बात जब पूछते हैं। लेकिन पत्नी का जो त्याग किया वो राज धर्म है, मोह नहीं किया, ये कहानी काल्पनिक है। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी अगर मोह करेगा देशराज की तरह तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। ये अतीत से सीखना है, और न्याय नहीं कर सका। अब इसी तरह आपसे कहूंगा, हमें अपने बच्चों को प्यार करना है, उन्हें अच्छे रास्ते ले चलना है, पिता धर्म निभाना है, लायक बनाना है। लेकिन अगर मोह आ गया तो एक दो कहानी मैं जानता हूं, बच्चे ऑफिसर बन के जहां गलत ढंग से कमाना शुरू किए और आज उनकी जेल हुई, आजीवन कारावास हुआ, तो पिता से पूछा आपने लेने का रास्ता तो बताया, अब जेल में से छूटने का रास्ता बताओ। कहते ये तो उसका काम था, मेरा काम नहीं है। दुख में कोई आपकी मदद करने वाला नहीं, बस समझ जाइए कोई नहीं, केवल आपकी पवित्रता, शुद्धता, आपका न्याय। अंधेरे में आपकी छाया भी आपका साथ छोड़ देती है। सुख में दिन में छाया भी दिखाई पड़ती है। अंधेरा नाम दुख, आपके तुम हमारे परिचित कितने बने क्या नाम बताओ। एक मेरे परिचित है, मैंने बहुत सावधान किया था लेकिन पैसे के मोह में आजीवन कारावास हुआ। एक गुजरात की बात नहीं है, गुजरात के बाहर की बात है। बीए में पढ़ते तब से बहुत मैंने समझाया था कि आप इतने बड़े आदमी बन रहे हैं, बहुत लोग तुम्हें खरीदने की कोशिश करेंगे लेकिन समय क्या है। जब मैं मिलने गया कहे स्वामी जी आपने बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात बताई जो आप स्वामी जी जब मैं आईजी बना कितने नकली भतीजे और भांजे तैयार हो गए, लेकिन अभी असली ही नहीं आते, नकली की तो बातें छोड़, असली भी नहीं आ रहे। दुख में केवल आपका न्याय, इसका बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए आप किसके लिए, और वही संस्कार की बात, हम हिंदू हैं और हमें देखना पड़ेगा हिंदू संस्कार। मैं सबके लिए कहता हूं, अंदर के माता पिता गुरु कभी नहीं मरते। पहले की बात बताऊं, अब की भी बात बताऊं, भले गुरु सामने लग रहा है द्रोणाचार्य हैं कि पितामह, लेकिन आशीर्वाद अर्जुन के साथ है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति हुई, गुरु सामने था लेकिन आशीर्वाद केले दिया। आज पूरी दुनिया कहती है क्या भारत की संस्कृति है कि चेला मेरे खिलाफ, फिर उसके विजय का आशीर्वाद गुरु दे रहा है तो चेला हारेगा कैसे, कैसे आ सकता है। आप और आपके बेटे बात करता, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि बाप बेटे आपने सामने हो जाए तो बाप का सामने आशीर्वाद, अपने बेटे के सामने हारने में भी कोई तकलीफ नहीं है, गुरु को भी अपने चेले के सामने हारने में कोई तकलीफ। ये हमारी संस्कृति है, कहीं दूसरे की नहीं। कभी कभी सरकार के आदेश से मुझे जेल में भी लेक्चर देने जाना पड़ता है, वो आज कैदी मिले बहुत कुछ मिले, लेकिन जब भी मिले क्या तो अपने बेटे को चोर बनाएगा, डाकू बनाए स्वामी नहीं। और मैंने अनुभव से पाया कि परिस्थिति ने किसी को चोर और डाकू बनाया, लेकिन अंदर का बाप कभी नहीं मरता, अंदर का बाप कभी नहीं मरता। इसलिए मेरे प्रिय, कभी पिताजी से या कोई हो जाए गलती तो पुत्रों से कहता हूं, वो कोई परिस्थिति होगी लेकिन बाप अंदर से नहीं पलता। इसलिए बाप की परिस्थिति को नहीं देखना, तुम्हारा बाप अंदर जिंदा है उसे आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। चाहे अंदर का बाप कभी नहीं मरेगा, अंदर की मां कभी नहीं मरेगी, अंदर का गुरु कभी नहीं मरेगा चाहे कोई भी हो जाए। कुछ ऐसी कहानियां मेरे सामने आई है, मैंने कहा उन्होंने आपको कुछ तो दिया है, कहा दिया है तो दुनिया कुछ बोले तुम उनकी पूजा करो। ठीक है, तो व्यवहारिक बातें होता जाता रहता है, इसलिए कोई बात नहीं, व्यवहार से मत देखो या विचार करो। और दूसरी चीज यह है कि अनुमान पर निर्णय मत लो। आप जिम्मेदार हैं, दशरथ एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने गुरु से कहते हैं गुरुदेव मुझसे भूल हो गई, बताया वहीं पर एक व्यवस्था दी गई है। और विज्ञान की बात है, अगर अनुमान गलत हो गया तो, इसलिए आप सब जिम्मेदार हैं अनुमान पर कभी निर्णय लेना। अनुमान गलत हो गया तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मुट्ठी भर चने की बात आई, किसी के हिस्सा कभी मत दबाना, भगवान आपको बहुत देगा। सत्ता की बात आई, पांच गांव तक की बात आई, तो आज पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूं जो लोग दूसरे किसी तरह दबाए हैं उनकी हालत क्या है, चाहे वो देश हो कि कुछ भी है, कैसे भी उसका परिणाम विकट आएगा। डेढ़ दो साल पहले मुझसे कहीं पूछा गया, मैंने कहा मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना है, इसलिए राजनीति में जानता हूं, लेकिन मैं एक गुरु हूं संत तो मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, जब महाभारत पढ़ता हूं तो शांति के लिए दो टुकड़े किए गए हस्तिनापुर के, खांडवप्रस्थ और बाद में इंद्रप्रस्थ, लेकिन जब भी शांति नहीं मिली तो हमें युद्ध करना पड़ा और उसमें जो भागी थे सबको मिटाना पड़ा। तो आपका प्रश्न राजनीतिक ढंग से है तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप में से जो टुकड़े निकले हैं ये जब तक रहेंगे आपको शांति नहीं दे सकते, बस इतना ही कहूंगा, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसका मतलब उनको मिटाना चाहिए, मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं हूँ, ये निर्णय आपको लेना है, लेकिन मैं जानता हूं आपसे निकला हुआ टुकड़ा कभी आपको शांति से बैठने, ये दुर्योधन कभी शांति से बैठने नहीं देगा, ये आपका राजनीति है, आपको जो निर्णय करना करो, मैं तो शांति था, मैं तो रोज ओम शांति शांति बोलता तो है। इसलिए चाहे मुट्ठी भर चने की बात हो कुछ हो, और एक सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, अब बड़े प्यार से क्योंकि लोग आते हैं, बनारी रोज मंदिर जाता हूं, रोज गुरु के पास जाता हूं, फिर ऐसा क्यों? गुरु से कपट मित्र से चोरी, मेरे प्रिय आत्मन गुरु के सामने खुले दिल से करो, रास्ता निकालो, गुरु से कभी कपट न करो। आज जिन लोगों ने गुरु से कपट किया है उनकी हालत पहले भी खराब हुई आज हुई। दुर्योधन ने कितना कपट किया है, राक्षसों ने कितना किया है, स्वप्नी मामा ने कितना किया है, ये सब पात्रताएं अयोग्यता की अलग अलग नाम से दिखाई दे। मैं वैज्ञानिक हूं, मैं मानता हूं कल्पना है, लेकिन मैं कहता हूं सारे अच्छे नाम है लेकिन कौरवों में किसी का अच्छा नाम, दुशासन दुर्योधन दुशाला, ये सारे पात्रों की बात है, इसलिए सारी कल्पना, लेकिन उस कल्पना पर चलेंगे तो हमारी हालत दुर्योधन जैसी होगी, दुशाला जैसी, दुशासन जैसी। ये विज्ञान का आधार बताता है, आज भी अपने बेटे कोई नाम दुशासन नहीं रखता तो पहले कैसे रहे, दुर्योधन नहीं रखता, लेकिन एक पात्र का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया और बताया। और एक चीज और जबरदस्त बता दो मेरे प्रिय आत्मन, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोग मेरे परिचित हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं रंगोद्योग का चरणों में रहने वाला भी एक साधक हूं, एक संत हूं। और आप देखिए रंगोद्योग के जीवन को कितनी सिद्धियां प्राप्त थी, कितना आप कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, करोड़पति बन गए। और मैं दर्जी से जानता हूं हमारे बाप जी ने, रंग और दूध हमारे संतों ने कितना सहन किया है, लेकिन अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। आस पास पैसा है, आस पास बल है, आस पास पद है, मिलाने की बात करना, उठाने की बात करना, कभी उसका दुरुपयोग न करना। आप मंदिर में जाते हैं, टैगोर की बात को याद रखना, टैगोर कहते हैं आपके पास प्रभु आया हूं, इसलिए नहीं आया हूं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन कर्तव्य पालन करते समय अगर कोई मोह कमजोर कर दे, कोई वासना आ जाए, मैं अगर किसी तरह कमजोर बन जाऊं, हे प्रभु मेरी कमजोरी पर प्रहार करना, मेरी कमजोरी को दूर। आज तो मैं कमजोर नहीं हूं और बेबस होकर के, कमजोर बन करके, लाचार होके नहीं आया हूं, लेकिन कर्तव्य पालन करते समय अगर कभी लाचार कमजोर हो जाऊं तो मेरी कमजोरी को दूर करना। किसने? अर्जुन की कमजोरी को दूर किया। इसलिए गीता का पहला प्रहार है कि आपके कमजोरी को दूर करना। इसलिए वेद विज्ञान और गीता के आधार पर कहता हूं आप राम को मानते हैं तो पूरे राम हैं आप, कृष्ण हैं, मेरा पुत्र मुझे पिता कहते कहते पिता बन जाता है, मेरा शिष्य मुझे गुरु कहते कहते गुरु बन जाता है। इसलिए राम की भक्ति करने वालों, कृष्ण की भक्ति करने वालों, शिव की भक्ति करने वालों, आप जिसकी भक्ति करते हो विज्ञान कहता उसका स्मरण करते 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 आप भी वही हो जाते हैं, यू बिकम टोटल, कोई अंतर नहीं रहता। इसे खंडन का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आप मानते किसको, कहते किसको? लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त करके भी हमें दुर्योधन का सामना करना पड़ेगा, हमें कंस का सामना करना पड़ेगा, सपनी जैसे मामा का करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए अवतार को देखें या आपकी साधना से शक्ति और सिद्धि आपको उत्तरित हुई है। विज्ञान का तो अवतार जन्म से शक्ति लेकर आता है और हम आप साधना द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते हैं। एक ऊपर से सिद्धि लेकर आया और हम आप साधना सिद्धि प्राप्त करते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन सिद्धियां प्राप्त करके भी समाज में शुभ बन करके सामना करना पड़ता है। इसलिए हम नाच भी सकते हैं, घर से निकल भी सकते हैं, समय हमें जंगल जंगल में भटका सकता है, लेकिन विज्ञान क्या जवाब देता है? समय जब ऐसी स्थिति पैदा करता है तो आपको प्रशिक्षण देता है। 14 साल का राम का वनवास, 12 और 1 साल अज्ञात का, 13 साल का इनका, मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसी काल में तो राम को भी प्रशिक्षण मिला और पांडवों को मिला। इसलिए कभी समय ऐसा आ जाए तो ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करो, और ईश्वर की व्यवस्था में है कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है, समय पर काम आएगा। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करो और कुछ सीखने की चलने की बात करो। सुख को बढ़ाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, दुख में से निकालने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग है, कभी आपका भी समय कुछ ऐसा आ जाए उसमें सीखने की बात करो, अपने को मजबूत बनाने की बात करो। अगर आप महाभारत ही ले लें, जितनी शक्तियां दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई है वो 13 साल में प्राप्त हुई। आप राम की बात करें तो जितनी शक्तियां प्राप्त हुई है वनवास के दौरान, वनवास का मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहां सब छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी साधना के द्वारा आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें वनवास नहीं लेना है, हमें उस रिपीट नहीं करना है, लेकिन जगत में जब ऐसा देखिए थोड़ा समय निकालिए, आराधना कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, 15 दिन 10 दिन कहीं एकांत में रहिए, बाल बच्चों को दीजिए कि संभाले, और अपने को मजबूत बनाओ, सिखाओ, जागो और जगाओ। इसलिए आज पूरा विश्व कह रहा है और उसी आधार पर वे विज्ञान के आधार पर करता हूं, यहां पर जितने पुत्र पुत्री के रूप में नर और नारी के रूप में बैठे हैं सब शक्तिमान है, सब में ताकत है, लेकिन अगर परेशानी आई है या तो हमने निर्णय अनुमान पे लिया या मर्यादा को उल्लंघन किया या किसी के हक को दबाया तभी है। इसलिए जल्दी समझ जाए जो मेरे भाग में है वो कोई जाने वाला नहीं, और जो छीन कर लेंगे वो हमारे पास भी रहने वाला नहीं। अगर इतनी समझ आ जाए तो दुख किस बात का, मेरे पास बातें भाई भाई की आ रही, रिश्तेदारों की आ रही, और यही सुनता है कि मेरा भाग कहां था, कहां से कहां चला गया। परेशानियां हम पैदा कर रहे हैं, परमात्मा नहीं। आज अशोक जी के दरबार में आया, हम आप आए, खूब स्वागत किया। जब आप स्वागत कर रहे थे बड़े प्यार से कहूं, मैं अपने गुरु में बैठा हुआ था, मनीषानंद में नहीं था, अब गुरु में बैठ करके ध्यान नारेश्वर वाले कर रहा था कि आपका स्वागत हो रहा है, मनीषानंद का नहीं। आपने अपने शिष्यों को इतना संस्कार दिया कि जो आज मनीषानंद को बुलाए कोई बने। इसी तरह से मैं कहता हूं, जब आपका स्वागत हो, आपका मान हो, सम्मान हो, अपने माता पिता गुरु को याद करके और नारेश्वर वाले को भी याद रखना, उसको भी याद रखना, उनकी कृपा है, उनकी दया है। कभी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी लेकिन आपकी विजय ही होगी, आपके विजय होंगे। इसलिए आज आपके बीच में आया, हर तरह से विज्ञान और वेद के आधार पर कहता हूं आप जो है वही हो जाइए, गेहूं गेहूं होगा चना नहीं। आप अच्छे थे, अच्छे पसंद करते, आप किसी बच्चे से पूछिए कि बेटा तेरा पिता पट्टा वाला है तो क्या बने? नहीं गुरुजी, परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पिता पट्टा वाले बने, मैं तो कलेक्टर बनूंगा, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा। ये अंदर विचार प्रेरणा के रूप में कौन लाया? शुरू में जो कहा था, ये जो हमारा करण पिंड है इसका मूल स्रोत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है। जहां से सघन होकर हम आए पिंड बने तो उसका गुण तो है। भेद विज्ञान दोनों कहते हैं कि कि जहां से आए उसका गुण लेकर आए। आप ताप्ती नर्मदा में से एक लीटर जल लाइए, जो ताप्ती में गुण है वही लीटर में है, लेकिन शक्ति में अंतर है। ताप्ती में नावड़ी करेंगे, स्नान करेंगे, लेकिन लीटर पानी में नहीं। हम लोग परमात्मा में से आए और विज्ञान कहता है दूसरा गुण धर्म में मिलन होगा। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, मैं यही कहूंगा, जिस परमात्मा की खोज आप कर रहे हैं, कहीं कोई खंडन की बात नहीं है, आप पेड़ की पूजा करो, मैं सहमत हूं, आप किसी की पूजा करो, लेकिन पूजा में माइंड को एंगेज करो। पूजा तो रावण भी करता था, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। सिद्धियां तो कंस के पास हुई थी, दुर्योधन के पास भी थी, राक्षसों के पास भी थी, धन तो सबके पास है, जा विचार कीजिए। शक्ति राम के पास भी है, शक्ति रावण के पास। शक्ति शुभ बन करके समाज का कल्याण करने से राम हुए, और शक्ति का दुरुपयोग करके समाज का सत्यानाश करने वाला रावण बना। शक्ति है, लेकिन जो आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा चलना, ये मिलाने की बात करें। मान लो भाई भाई में झगड़े मेरे पास आते, मैंने क्या कुछ बोल, तो भाई को 2 लाख ज्यादा दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, किसी और को देने के बजाय जमीन है दे दो ना। मेरे पास आज तक जितने आए, मैंने किसी को कोर्ट में नहीं जाने दिया, क्योंकि वकील लोग भी मेरे शिष्य है, डॉक्टर भी मेरे शिष्य है, आए भी है पास, सब है, लेकिन गुरु का काम है सुख शांति देना। ये आपको तो मेरा जो धर्म है मिलाने की बात है। एक समय ऐसी बात हुई, 2 मित्र हैं, एक मित्र ने मुझे आमंत्रण दिया, 2-3 साल बाद दूसरे मित्र किसी बात पर कटुता हो गई, तो मैं उनके यहाँ गया, तो उन्होंने अपना पट्टा वाला भेजा कि गुरु जी कहो कि मित्र से लड़ाई हो गई है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप घर पे आइए। मैंने कहा पहली बार जब आप लोग कुटीर आए थे, दोनों साथ आए थे, अब अगर तुम आओ, क्योंकि मैं गुरु हूँ, गुरु को बुलाने का अधिकार शिष्य को है, आप मेरे शिष्य हैं, और किसी कारण आपने अपना दूध भेजा है, तो मैं भी अपना कोई चेला भेज दूंगा, लेकिन मैं आने वाला नहीं। गुरु को बुलाना है, खुद आओ। आए, फिर मैंने कहा क्या बात है, तो मेरा तो है जब भी मौका मिला किसी ने किसी बुला के मेल करा, यही मैं आपसे कहूंगा। इस 100 साल का जीवन है, किस तरह बीत रहा है आप जानते हैं, भले हम किसी की मदद न करें, लेकिन हमारे कारण कोई अलग ना हो, भले हम किसी हाथ में गुलाब का फूल न दे, लेकिन किसी को कांटा न दे, भले हम किसी के लिए शीतलता न प्रदान करें, चाम न बने, किसी के लिए अमावस न बने, ऐसे और पैसे करके आया, भले आप कोई अच्छा काम न करें, लेकिन कुछ बुरा भी न करें, भले आप अच्छा न सुने, आप निशान उनके पास मत आओ, आप नारेश्वर मत जाओ, लेकिन शराब खाने भी न जाओ, भले बताओ, लेकिन गलत जगह भी न जाओ, तो गलत जगह नहीं जाओगे वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये निर्णय आप कीजिए, क्या सुनने से, क्या देखने से, क्या बोल कहाँ जाने से आपकी कमजोरी दूर होती है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा प्रवचन है, कुछ भी हो, लेकिन सुनने, देखने, बोलने, चलने से अगर आप कमजोर बनते हैं तो आपके लिए अधर है। और कैसी भी कोई बात है, लेकिन आप बलवान बनते हैं, उसका गौरव आता है, आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं, समाज ठीक मानता है, तो धर्म है। बस जिस कर्म को देखकर आप गोल्ड मेडल लाओगे तो माँ बाप प्रसन्न होंगे, लेकिन फेल हो जाओगे नहीं, इसलिए फेल होना धर्म है। आप शराब पियोगे तो माता पिता नहीं प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न होंगे, तो आपकी प्रसन्नता में माता पिता समाज भी प्रसन्न होना चाहिए। केवल अपनी प्रसन्नता देख करके न कहना कि स्वामी जी ने कहा जो प्रसन्नता है ईश्वर की भेंट है, और मैं तो शराब पीकर प्रसन्न हुआ इसलिए ईश्वर ने भेंट में दिया। मेरे शब्दों का इधर उधर तोड़ कर कष्ट नहीं लगाना। आप छिड़के क्यों काम करते भाई, क्यों देख लीजिए विज्ञान क्या कहता है, चाहे कल्पना ही हो,
धर्म धर्म की एक बात मनोविज्ञान से करूंगा, उदाहरण नहीं दूंगा। लंकेश जब चलता था तो जमीन कांपती थी, लेकिन जब सीता की तरफ जा रहा है तो दिल ही तरह कांप रहा है। विज्ञान ने यही बात हमें आपको समझाने की कोशिश की। मैं आपसे नहीं कहता कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं, लेकिन जो कर्म करने जा रहे हो, चाहे धर्म के नाम से, संस्कार के नाम से, देश के नाम से, माता पिता के, किसी के डर के कारण, माता पिता समाज न्याय, अगर किसी तरह भय पैदा हुआ तो अधर्म है। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, इतना ही कहता हूं सुनने देखने बोलने चलने करने से अगर भय पैदा हो जाए उसे मत करना, लेकिन अगर निर्भय बनते हो और गौरव मिलता है समाज और आप उठते हो तो वही आपका धर्म है। इसका न्याय आपको करना पड़ेगा, मनीषानंद को नहीं। क्या सुनने से, क्या देखने, क्या नहीं देखने से, क्या है? तो आज अशोक जी आया, आपका नाम इतना सुंदर है, मिला तो पहले भी था, लेकिन यहाँ बैठ कर लगता है कि अशोक के पास कोई आ जाए तो कोई शोक ही नहीं है, बड़े अच्छे आते हैं। तो इस अशोक मंडप में आप आए, मैं प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध विश्व वंदनीय है अवधूत रंग महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ही आशीर्वाद मांग करके, हे रंग अवधूत महाराज अपना आशीर्वाद मनीषानंद को दो और उसी में से आज जो बैठे उनको दो, इतना दो इतना दो कि जो चाहे हो, लेकिन ये शुभ रहें और समाज में शुभ काम करें और शुभ बन करके आपके चरणों में भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रंग अवधूत महाराज ये आपको नहीं छोड़े और अपने कर्तव्य गांधी को भी नहीं छोड़े। आज यही रंग अवधूत महाराज हूं, आप रंग अवधूत महाराज को न छोड़ो, सभी संतों का आदर करो, सब में हमको देखो और अपने कर्तव्य को न छोड़ो। आएगी परेशानियां, लेकिन जैसे अर्जुन ने न कृष्ण को छोड़ा न गांधी को छोड़ा, आप न रंगोदूत को छोड़िए न कर्तव्य को छोड़िए, परेशानी आएगी लेकिन रंगोदूत किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे और आप परेशानी में से मुक्त हो जाएंगे। कभी डरने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा अंतिम शब्द याद रखना। कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति हो, लेकिन रंगोदूत को नहीं छोड़ना, कर्तव्य को नहीं छोड़ना। परेशानियां आएंगी लेकिन रंगोदूत महाराज किसी न किसी रूप में आकर आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको बचाएंगे बचाएंगे, क्योंकि गुरु का काम है बचाना, गुरु का काम है बचाना और हमें बचा रहे हैं और बचाते रहेंगे। इस भाव के साथ रंगोदूत महाराज को याद करते हुए जो मैं आपके समक्ष थोड़ा सा विचार रखा, उस विचार पर विचार करना और निर्णय आप करना। रंगोदूत के रूप में आप सबको उसी रूप में देखते हुए और परमात्मा को भी उसी रूप में देखते हुए, हमारे रंगोदूत भी मेरे लिए परमात्मा है, उनके स्वरूप हैं, आप सब परमात्मा है। तो ये परमात्मा इस परमात्मा को बंधन करते हुए अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, जैसे अंत में कृष्ण अर्जुन भी कृष्ण बन गया किस से। इसलिए हे मेरे प्रभु, कर्म करते स्मरण करते आप सब रंगावधूत हो जाए, रंगावधूत हो जाए, यही प्रभु से प्रार्थना। हरि ओम।